एट्रियम हृदय के दो ऊपरी कक्षों में से एक है जो परिसंचरण तंत्र से रक्त प्राप्त करता है। एट्रिया में रक्त एट्रियोवेंट्रिकुलम माइट्रल और ट्राइकपेड हृदय वाल्व के माध्यम से हृदय निलय में पंप किया जाता है। मानव हृदय में दो अर्टेरिया होते हैं, बायां आलिंद फुफ्फुसीय परिसंचरण से रक्त प्राप्त करता है और दायां आलिंद प्रणालीगत परिसंचरण के वेनिकावा से रक्त प्राप्त करता है। हृदय चक्र के दौरान अर्टेरिया डायस्टोल में आराम करते हुए रक्त प्राप्त करता है, फिर रक्त को निलय में ले जाने के लिए सिस्टोल में सिकुड़ता है। कान के आकार के प्रक्षेपण को छोड़कर, जिसे अलिंद उपान कहा जाता है, प्रत्येक अलिंद मोटे तौर पर घन के आकार का होता है, जिसे पहले अलिंद के रूप में जाना जाता था। बंद परिसंचरण तंत्र वाले सभी जानवरों में कम से कम एक अलिंद होता है। अलिंद को पहले ओरिकल कहा जाता था। संरचना मनुष्य का हृदय चार कक्षों वाला होता है, जिसमें दाएं और बाएं आलिंद और दाएं आलिंद और निलय को बायां हृदय कहा जाता है। चूंकि अर्टेरिया के प्रवेश द्वारों पर वाल्व नहीं होते हैं दो, इसलिए शिरापरक स्पंदन सामान्य है और गले की नस में गले के शिरापरक दबाव के रूप में इसका पता लगाया जा सकता है। आंतरिक रूप से खुरदरी पेक्टिनेट मांसपेशियां और हिस्की क्रिस्टा टर्मिनलिस होती हैं, जो अलिंद के अंदर एक सीमा के रूप में कार्य करती है और दाएं अलिंद की चिकनी दीवार वाला हिस्सा साइनस वेनम, जो साइनस वेनोसिस से निकलती है। साइनस वेनरम साइनस वेनोसिस का वयस्क अवशेष है और यह वेने केवा और कोरोनरी साइनस के उद्घाटन को घेरता है। पांच, प्रत्येक अलिंद से एक अलिंद उपान जुड़ा होता है। दायां अलिंद हृदय का एक भाग, दायां अलिंद बेहतर वेना कावा, अवर वेना कावा, पूर्वकाल हृदय शिराओं, सबसे छोटी हृदय शिराओं और कोरोनरी साइनस से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और रखता है, जिसे ये ट्राइकपेड वाल्व के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल में भेजता है, जो बदले में इसे भेजता है फुफ्फुसीय परिसंचरण के लिए फुफ्फुसीय धमनी। दायां अलिंद उपांग, दायां अलिंद उपांग अक्षांश ऑरिकुला एट्री डेक्स्ट्रा दाहिने अलिंद की सामने की ऊपरी सतह पर स्थित होता है। सामने से देखने पर दायां अलिंद उपांग पच्च के आकार का या त्रिकोणीय दिखाई देता है। इसका आधार बेहतर वेना कावा को घेरता है। छह, दायां अलिंद उपांग दाएं अलिंद का एक थैली जैसा विस्तार है और पेक्टिनेट मांसपेशियों के ट्रबिकुला नेटवर्क द्वारा कवर किया गया है। इंटरएट्रियल सेप्टम दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से अलग करता है। ये दाहिने आलिंद में एक अवसाद द्वारा चिन्हित है, फोसा ओवलिस। अटेरिया कैल्शियम द्वारा विद्रुवित होता है। बायां आलिंद बाएं आलिंद को बाएं और दाएं फुफ्फुसीय नसों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, जिसे ये प्रणालीगत परिसंचरण के लिए महाधमनी के माध्यम से बाहर पंप करने के लिए बाएं वेंट्रिकल माइट्रल वाल्व, बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के माध्यम से पंप करता है। बायां आलिंद उपान, बाएं आलिंद उपान को ऊपर दाईं ओर दिखाया गया है। बाएं आलिंद के ऊपरी भाग में ऊंचे स्थान पर एक मांसल कान के आकार की थैली होती है, बायां आलिंद उपान अक्षांश ऑरिकुला एट्री सिनिस्ट्रा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बाएं वे ट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान और अन्य अवधियों के दौरान, जब बाएं आलिंद का दबाव अधिक होता है, एक डीकम्प्रेसिंग कक्ष के रूप में कार्य करता है। रक्त की आपूर्ति बाएं आलिंद को मुख्य रूप से बाएं सर्कम्फ्लेक्स कोरोनरी धमनी और इसकी छोटी शाखाओं द्वारा आपूर्ति की जाती है। बाएं आलिंद की तिरछी नस शिरापरक जल निकासी के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। ये भ्रूण के बाएं बेहतर वेना कावा से प्राप्त होता है। अटेरिया में विशेषताएं हैं जो उन्हें निरंतर शिरापरक प्रवाह को बढ़ावा देने का कारण बनती हैं। एक, अलिंद सिस्टोल के दौरान रक्त प्रवाह को बाधित करने के लिए कोई अलिंद इनलेट वाल्व नहीं है। दो, आलिंद सिस्टोल संकुचन अधूरे होते हैं और इस प्रकार उस हद तक सिकुड़ते नहीं हैं जिससे शिराओं से अटेरिया के माध्यम से निलय में प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। आलिंद सिस्टोल के दौरान रक्त न केवल अटेरिया से निलय में खाली हो जाता है, बल्कि रक्त शिराओं से अटेरिया के माध्यम से निलय में निर्बाध प्रवाहित होता रहता है। तीन, आलिंद संकुचन पर्याप्त कोमल होना चाहिए ताकि संकुचन का बल महत्वपूर्ण पीठ दबाव न डाले जो शिरापरक प्रवाह को बाधित करेगा। चार, अटेरिया के जाने का समय निर्धारित होना चाहिए ताकि वेंट्रिकुलर संकुचन शुरू होने से पहले वे आराम कर सके, बिना किसी रुकावट के शिरापरक प्रवाह को स्वीकार करने में सक्षम हो सके। अभ्यास एट्रियम को क्या कहा जाता है? अलिंद किससे बना होता है? एट्रियम का उद्देश्य क्या है?